भागवत सार की श्रृंखला में आज 24वें अध्याय के रुद्र गीत पर आगे चर्चा करेंगे। कृपया श्लोक को दोहराइए।
अथालवांग्रगेस्तव कीर्ति तीर्थयो अंतर्बहिर्स्नान विधूत पापमाना भूतेष्वनु क्रोश सुसत्वशीलिना स्यात् संगमो अनुग्रह एष नस्तव अथानगांग्रेस्तव कीर्ति तीर्थयो अंतर्बहिर्स्नान विधूत पाप्मानं भूतेष्वनु क्रोश सुसत्वशीलिना स्यात्संगमो नोग्रह एष नस्तव अथानगांग्रेस्तव कीर्ति तीर्थयो अंतर्बहिर्स्नान विधूत पाप्मना भूतेष्वनु क्रोश सुसत्वशीलिना स्यात् संगमो नोग्रह एष नस्तव
अथ अतः अनघ अंग्रहे भगवान के जिनके चरण स समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं, तब आपकी कीर्ति कीर्ति अथवा महिमा तीर्थयो पवित्र गंगा जल अंतः भीतर बहिः बाहर स्नान स्नान करना विधूत धोया हुआ पाप मनाम मन की दूषित अवस्था भूतेषु सामान्य जीवों को अनुक्रोश कृपा या वरदान सुसत्व पूर्णतया सत्वगुण में शीलिनाम ऐसे गुणों वालों का स्यात् हो संगमः साथ अथवा समागम अनुग्रह कृपा एषः यः न हमको तव आपकी। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, हे भगवन, आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण हैं और समस्त पापों के कलमश को विनष्ट करने वाले हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगति करने की अनुमति दें। तात्पर्य, गंगा जल सभी प्रकार के पापों के फलों का निवारण करने वाला माना जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो उसके जीवन भर के कलमश धुल जाते हैं। गंगा जल की ऐसी महिमा का कारण यह है कि गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकलती हैं। इसी प्रकार जो प्रत्यक्ष भगवान के चरण कमल के संपर्क में रहते हैं और जो उनके गुणों का गायन करते हैं, वे सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त ही सामान्य बद्ध जीवों पर अनुग्रह कर सकते हैं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर का गीत है कि भगवान चैतन्य के भक्त इतने शक्तिशाली हैं कि उनमें से प्रत्येक भक्त एक ब्रह्मांड को बंधन से मुक्ति दिला सकता है। दूसरे शब्दों में, भक्तों का कार्य है कि वे भगवान की महिमा का उपदेश करें और सभी बद्ध जीवों को शुद्ध सत्व पद तक पहुँचाएं। यहाँ पर सुसत्व शब्द का अर्थ शुद्ध सत्व है, जो भौतिक सत्व से आगे की दिव्य अवस्था है। शिवजी अपनी विशिष्ट स्तुति के द्वारा हमें यह शिक्षा देते हैं कि सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान विष्णु तथा उनके वैष्णव भक्तों की शरण में जाया जाए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे।
सर्वशास्त्राभिपीयूष सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तु ते। मदेक बंधो मत्संगे मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तु ते। असाधु साधु तदाइन अति नीचोच तह कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम्णारुत्कंठयोस्पुरा।
हरे कृष्ण। कल चर्चा कर रहे थे रुद्र गीत के अध्याय की, शिव जी के द्वारा स्तुति का गान। तो कल शिव जी के द्वारा किए गए इस गान को हम लोग कर नहीं पाए पूरा, तो आज इसको आगे करेंगे। जैसे हमने बताया था कि श्लोक नंबर 33 से लेकर 68 तक है, तो ये रुद्र गीत अब हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो प्रचेताओं से मिलने के बाद शिव जी ने उनसे कहा कि मैं आपको ये मंत्र देना चाहता हूँ, क्योंकि आप भगवंतम वासुदेवम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो और मुझे बहुत प्रिय हो। तो फिर उन्होंने ये मंत्र, ये जो रुद्र गीत है, इसको कहना प्रारंभ किया। इस पूरे रुद्र गीत को शिवजी ने कई भागों में कहा है, अर्थात कहा तो पूरा एक साथ है रुद्र गीत, लेकिन इसको कई भागों में विभाजित किया है। जैसे सबसे पहला विभाग इस रुद्र गीत का है ज्ञान। शिवजी ज्ञान देते हैं कि कैसे भगवान अलग अलग रूपों में जीव को नियंत्रित करते हैं, और कैसे जैसे वो अलग अलग जो अधिष्ठाता देव हैं उनके नाम लेते हुए कि ये इंद्रियों को वश में, इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं, ये मन के अधिष्ठाता हैं, ये अहंकार के अधिष्ठाता हैं, लेकिन कैसे ये सब आपके अधीन हैं और आपकी सेवा करने से हम इससे बाहर आ सकते हैं। तो पहली चीज अपने प्रार्थनाओं में वो देते हैं और वो है ज्ञान। फिर जब ये भी ज्ञान आ गया कि भगवान ही सब कुछ है, तो कौन है वो भगवान, तो फिर उनके रूप का वर्णन करते हैं शिव जी कि जिन भगवान का वो वर्णन कर रहे हैं, जो सब चीज नियंत्रित करते हैं, जिनका ज्ञान उन्होंने दिया, वो कोई निराकार नहीं है, निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं है। तो फिर कुछ श्लोकों में वो भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं और बड़े विस्तार से उनके चरणों का वर्णन होता है, उनके नखों का वर्णन है, उनके ये सारे वर्णन करते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग आज करेंगे। और फिर जब उन्होंने ये रूप का वर्णन कर दिया, तो पहले उन्होंने ज्ञान दिया कि भगवान सब चीज के नियंत्रण है, नियंत्रण करते हैं। फिर आए कि कौन है वो भगवान, श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया, क्योंकि पहले ही श्लोक में उन्होंने कहा कि मैं वो रूप देखना चाहता हूं जो भक्तों को बहुत प्रिय है, बाकी कोई रूप नहीं देखना है मुझे, आपके बहुत से रूप हैं लेकिन भक्तों को जो प्रिय है वो देखना। तो इसीलिए भगवान कृष्ण का वर्णन किया, फिर उस रूप का वर्णन करके अब क्या, ठीक है ज्ञान हो गया, भगवान नियंत्रण है, भगवान कौन है पता चल गया, अब भक्ति। तो वर्णन करते हैं कि भक्ति के द्वारा ये जाना जा सकता है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और फिर भक्ति कैसे की जाती है, भक्तों के संग में। फिर भक्तों के संग का वर्णन करते हैं शिव जी। देखिए प्रार्थना बहुत नियमबद्ध तरीके से है, ऐसे ही नहीं कि शिव जी के मन में जो श्लोक याद आया उन्होंने प्रार्थना कर दी। हम लोग तो ऐसे करते हैं ना कभी कभी, हमसे कहा जाए कि भगवान के सामने खड़े होकर 20 श्लोक बोलिए तो हमें जो याद आएगा वो पहले बोल देंगे, तो ऐसा नहीं था। शिव जी बड़े नियम से चल रहे हैं, ज्ञान दे दिया, फिर रूप दे दिया, फिर उस रूप को प्राप्त कैसे करना है, भक्ति का मार्ग दिया, भक्ति कैसे करनी है, भक्तों का संग दिया, जैसे आज के श्लोक में भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर भक्तों का संग देने के बाद वो बताते हैं कि कुछ लोग ब्रह्म से आकृष्ट हो जाते हैं, तो अब वो सर्वोच्च चीज बता दी, भगवान का धाम कैसे प्राप्त करना है, भक्तों का संग। और फिर आते हैं इस जगत की ओर, तो ब्रह्म ज्योति का वर्णन करते हैं, ब्रह्म ज्योति के बाद इस भौतिक जगत का वर्णन करते हैं अपने प्रार्थनाओं में। और भौतिक जगत का वर्णन कैसे ये बनता है, कैसे इसकी सृष्टि होती है, कैसे जीव बद्ध हो जाता है, ये सब करने के बाद अंत में कहते हैं कि ये सब बेकार है, जीव को इससे बाहर जाना चाहिए। तो ये उनकी सारी प्रार्थनाएं हैं। तो पहले वो वर्णन करते हैं ज्ञान का, प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले तो प्रणाम करते हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रार्थनाएं अर्पण की जाती हैं तो सबसे पहले प्रणाम होता है, भगवान को नमस्कार किया जाता है। तो प्रणाम करते हैं भगवान को, प्रणाम करते हुए ज्ञान देते हैं, नमः पंकजनाभाय इत्यादि श्लोकों से वो प्रणाम करते हैं। तो भगवान के प्रणाम करने के बाद अलग अलग अधिष्ठाता देवों का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे हमारा जो सारा जीवन है जीव का, हम सब का, वो अधिष्ठाता देवों के द्वारा नियंत्रित है। जैसे वो वर्णन करते हैं कि अहंकार, अहंकार के अधिष्ठाता देव कौन है, शिव जी रुद्र स्वयं है, तो वो भी वो वर्णन करते हैं। तो उससे पहले भगवान का वर्णन वो करते हुए कहते हैं शांताय कूटस्थाय, भगवान का नमः पंकजनाभाय शांताय कूटस्थाय, ऐसे शब्दों से उनको गुणगान करते हैं। तो पंकजनाभाय का अर्थ है कि जिनकी नाभि से कमल निकलता है, इसके दो अर्थ है, जिनकी नाभि कमल के समान है, और दूसरा जिनकी नाभि से कमल निकलता है जो इस भौतिक जगत का आधार है, अर्थात उसी पे पूरा भौतिक जगत टिकता है, तो इसीलिए उनको पंकजनाभाय कहा गया है। ये शब्द कुंती महारानी भी इस्तेमाल करती हैं, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमस्ते पंकजांग्री है, तो वहां वो उनकी नाभि की तुलना कमल से कर रही हैं। तो नमन करते हुए वो उनके धीरे धीरे उनके शरीर के वर्णन करती हैं। लेकिन यहां जब ये कहते हैं नमः पंकजनाभाय, तो ये वो कह रहे हैं कि आपके नाभि से कमल निकलता है और उस कमल पर ये सारा भौतिक जगत टिका हुआ है, तो इसलिए पंकजनाभाय का ये भी अर्थ होता है। तो शिव जी कहते हैं कि उस पंकज पर सब कुछ टिका हुआ है, उस कमल पर, और आप उसके स्रोत हैं। और आप कैसे हैं, शांताय कूटस्थाय, शांत हैं आप, कभी विचलित नहीं होते। इस जगत में हम सब विचलित होते हैं, कोई पूर्ण शांत नहीं है, ना ही कूटस्थ, कूटस्थ मतलब स्थित, जो कभी हिलते नहीं हैं, अपनी स्थिति से नीचे नहीं आते। तो हम सब क्यों शांत नहीं हैं, हमें इस जगत की कुछ चीजें अशांत बनाती हैं, जैसे भूख, जैसे प्यास, मोह में आना, ये चीजें, और फिर वृद्धावस्था, मृत्यु की निकटता, और बहुत ज्यादा दुखी होना, ये छह चीजें हैं इस जगत में जो जीव को हमेशा अशांत रखती हैं, है ना। भूख होती है, अगर जीव को बहुत भूख लगे तो वो शांत रहेगा? बिल्कुल नहीं, हमेशा चिंता रहेगी कब प्रसाद मिले, कब प्रसाद मिले। खैर आप लोगों की बात अलग है, आप तो भागवत में आने के पहले लेकर आते हैं, यही कारण है कि ताकि आप ज्यादा चिंता में नहीं रहें कि समय हो गया अभी क्या है, बंद किया जाए, भूख लग रही है। और स्वाभाविक अगर भूख बड़ी तेज होगी तो क्या भागवत में रुचि आएगी, आनंद आएगा आपको भागवत में? कोई आनंद नहीं आएगा। तो इसीलिए ये बड़ी विचलित करने वाली चीज है। प्यास लगी हो अगर किसी को, अगर जब बहुत गर्मी होती है जिस स्थान पर वहां पर हम जाएं और जब प्यास लगी होती है तो कितना व्यक्ति विचलित होता, मोह से विचलित हो जाता है। ये तो स्वाभाविक है, मोह से तो विचलित होना ही। फिर वृद्धावस्था जब आती है, बहुत कष्ट होता है सबको। हम लोग अभी उस अवस्था में पहुंचे नहीं इसीलिए हम अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन जो पहुंचे हैं वो जानते हैं कितना कष्टदायक है। बैठ जाओ तो उठा नहीं जाता, उठ जाओ तो बैठा नहीं जाता, है ना, बैठे तो घुटने दर्द करते हैं इत्यादि, कुछ करने जाओ तो कष्ट है। तो ये हमें विचलित करते। और फिर जब मृत्यु का समय आता है वो बहुत विचलित करता है। मृत्यु के समय तो व्यक्ति, क्योंकि ज्ञान होता नहीं है क्या हो रहा है, मृत्यु क्या है, आप सोचिए कितना विचलित होगा। भक्त नहीं है तो, भक्त है तो ठीक है, ज्यादा वो कहेगा कुछ भगवान का नाम कानों में पड़ जाए, जाना तो है ही। लेकिन जो भक्त नहीं है वो कितना विचलित होगा, घबरा जाएगा क्या हो रहा है मृत्यु। ऊपर से उसके जो रिश्तेदार हैं वो कहते हैं भगवान का नाम लो, अब सब भूल जाओ, अब सब, और परेशान हो जाते हैं क्या हो रहा है। तो ऐसे मृत्यु में विचलित होते हैं, लेकिन भगवान इन सब से कोई प्रभावित नहीं, शांता या इसीलिए वो शांत, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको इस जगत की भूख सताती नहीं है। भूख प्यास मोह इन सब से वो परे हैं, तो इसलिए ना ही उन्हें कोई भूख है, ना प्यास है, ना मोह है, ना दुख है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु की निकटता। भगवान को कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि भगवान की जब मृत्यु होने वाली है तो भगवान बड़े विचलित होते, मृत्यु होती नहीं है। और अगर बाहरी दृष्टि से होती भी है, अगर हम लोग कृष्ण लीला में देखें कि भगवान ने अपना जो लीला को समाप्त किया तो क्या कर रहे थे मृत्यु के समय, ज्ञान दे रहे थे। उद्धव को बुलाया, मैत्री मुनि को बुलाया, तो उनको सब ज्ञान दे रहे हैं। तो कोई कौन व्यक्ति दे सकता है ज्ञान, केवल भगवान और भगवान के भक्त जैसे शिला प्रभुपाद। मृत्यु के समय उन्होंने सबको बुलाया, अपने सारे शिष्यों को, सब आओ, क्यों, ज्ञान दे रहे हैं प्रभुपाद सबको। रामानुजाचार्य जब अपना देह छोड़ने वाले थे, उन्होंने सारे शिष्य को बुलाया, 3 दिन तक उनको ज्ञान दे रहे थे। तो ये है। लेकिन हम लोग जब जाते हैं या कोई साधारण व्यक्ति जाता है तब क्या होता है, वो कोई ज्ञान नहीं देता मृत्यु के साथ। इसलिए भगवान शांताया कूटस्थाया। आगे वो कहते हैं, बहुत से अधिष्ठाता देवों को प्रार्थना करते हैं, जिनमें से एक है अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध का नमन करते हैं क्योंकि वो मन के अधिष्ठाता देव हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अनिरुद्ध को प्रणाम करता हूं ताकि मेरा मन वश में आए और आपके चरणों में लग सके। शिवजी सारी चीजें जो ज्ञान दे रहे हैं ये बता रहे हैं कि कैसे उसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता। तो वो कहते हैं, क्योंकि कोई प्रश्न कर सकता है कि शिवजी देवताओं का नाम क्यों ले रहे हैं, जैसे आगे अग्नि का भी लेंगे, अपना खुद का भी लेंगे और सूर्य इत्यादि, तो भगवान की प्रार्थना में क्यों ले रहे हैं? ये बताने के लिए कि हम सब अधीन हैं आपके, हम सब स्वतंत्र नहीं हैं। चाहे वो अग्नि हो, सूर्य हो, इंद्र हो, ब्रह्मा हो, कोई भी हो, वो स्वतंत्र नहीं है। ये बताने के लिए उन्होंने ऐसे अलग अलग अधिष्ठाताओं का नाम लिया। तो उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध हैं, तो उनसे वो प्रार्थना है कि मेरा मन वश में आ जाए जिससे मैं उसको भगवान के चरण कमलों में लगा सकूं। तो भगवान के चरण कमलों में मन को लगाना ये बहुत आवश्यक है। हमारा मन बहुत सी चीजों में लगा रहता है, लेकिन अगर मन में स्मरण केवल भगवान के चरण कमलों का हो, पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों का हम स्मरण करें,
तो फिर ये मन शुद्ध हो जाता है। मन नहीं तो अशुद्ध है, तो मन शुद्ध हो जाता है। इसीलिए कई बार भक्त जो होते हैं भगवान के चरण कमलों का स्मरण जप के समय करते हैं। भगवान के चरण कमलों में अलग अलग चिन्ह हैं, तो उन चिन्हों का वो स्मरण करते हैं ताकि मन भगवान के चरण कमलों में लग सके। बहुत सुंदर सुंदर चिन्ह हैं और बड़े ज्ञान प्रदान करने वाले, जैसे एक अंकुश का चिन्ह है भगवान के चरणों में। अंकुश जानते हैं आप लोग? अंकुश नहीं पता किसी को? हाँ, हाथी को नियंत्रण करने के लिए एक इतना सा वो लोहे का होता है, उसको मारा जाता तो हाथी एकदम नियंत्रण, जो महावत बैठता है ऊपर वो अंकुश से हाथी को कंट्रोल करता है। होता अंकुश इतना सा है, हाथी बहुत बड़ा, लेकिन उससे कंट्रोल करता। तो अंकुश का चिन्ह है भगवान के चरण कमलों में, जो ये बताता है कि हमारा हाथी जैसा मन जो नियंत्रण में नहीं आ सकता, हमारा मन ऐसा ही है ना, हाथी की तरह है, कहाँ नियंत्रण में आता है। लेकिन अगर भगवान के चरणों का स्मरण हो तो वो अंकुश की तरह है कि उसको बड़े आराम से नियंत्रण कर लेता। तो एक आप देखिए, आपने कभी महावत देखे हैं? इतने से होते, ऐसे पतले होते महावत, ज्यादा कोई कभी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हमने देखा बड़े पतले होते हैं। उनको हाथी के साथ में खड़ा करके फोटो ली जाए तो दिखाई भी नहीं देंगे फोटो में, ऐसे होते हैं। लेकिन वो हाथी को वश में कर लेते हैं हाथी उनके आदेश पर चलता है, जो वो कहते हैं महावत जैसा कहता है हाथी करता है। तो अंकुश होता है, वो सर पे लगाते हैं उसके, महावत जैसा कहता है वैसा करता। तो अंकुश का चिन्ह का स्मरण करने से हमारा जो हाथी जैसा मन है, हम उसको भगवान के द्वारा भगवान के चरण कमलों में लगा सकते हैं। तो ऐसे चरण चिन्हों का स्मरण करना चाहिए। भगवान के चरणों में मछली का चिन्ह है, ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं, धनुष का है, चंद्रमा का है, अर्धचंद्र है, ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं। कभी किसी दिन भगवान के चरण कमलों का वर्णन करेंगे और उनके में जो चिन्ह हैं, शंख का चिन्ह इत्यादि, तो उसका क्या महत्व है, भक्ति में कैसे मदद करते हैं, इसको चर्चा करेंगे। तो ऐसे शिव जी कह रहे हैं कि मेरा मन आपके चरण कमलों में लगे, ताकि इसीलिए मैं अनिरुद्ध जो हैं उनको कह रहा हूँ कि मेरा वश में रहे मन और मैं अब भगवान के चरणों में लगा सकूं। और फिर अहंकार की बात करते हैं, जिसके अधिष्ठाता स्वयं है शिव जी। तो वो कहते हैं कि ये जो मिथ्या अहंकार है इसको शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए अहंकार की बात करते हुए कहते हैं कि अहंकार को शुद्ध कैसे किया जा सकता है। अगर हमारा जो मन और कार्य हैं वो वेदों के अनुसार भगवान की सेवा में लगते हैं तो अहंकार को शुद्ध किया जा सकता है। तो इसलिए अपने मन और अपने कार्यों को भगवान की सेवा में लगाना है, लेकिन आचार्य या जो वेद की वाणी है उसके अनुसार, तब हमारा अहंकार ये समाप्त, मिथ्या से शुद्ध अहंकार में परिवर्तित हो सकता है। हमें किसी भी चीज को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उसको शुद्ध करना। जैसे हम अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं करते हैं, शुद्ध करते हैं, अहंकार को समाप्त नहीं करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो इसीलिए शुद्ध अवस्था में भी अहंकार रहता है, लेकिन वो शुद्ध अहंकार, और वो क्या अहंकार है कि मैं भगवान का दास हूं, ये शुद्ध अहंकार है, और मैं नियंत्रक हूं ये मिथ्या अहंकार है, मैं ये शरीर हूं ये मिथ्या अहंकार है। तो शिव जी ऐसे चर्चा करते हैं, फिर भगवान को ये भी कहते हैं कि आप ही द्वार हैं, स्वर्ग अपवर्ग द्वार, स्वर्ग के और अपवर्ग के। स्वर्ग अर्थात कई लोग होते हैं जो इस जगत में बड़ा आनंद पाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आप ही व्यवस्था करते हैं, और अपवर्ग, अपवर्ग मतलब जो मुक्ति पाना चाहते हैं उनके आश्रय भी आप ही हो। तो आप ही द्वार हो स्वर्ग के लिए, आप ही द्वार हो अपवर्ग के लिए, और आप ही सारे वेदों के स्वामी हो। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि आप ही इस जगत को पालन करते हो, न केवल जगत को, हर जीव का व्यक्तिगत रूप से आप ही पालन करते हो। हम लोग तो ये सोचते हैं कि हम खुद का पालन करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, हम कुछ करते हैं, उससे हमारा शरीर चलता है। शिव जी कहते आप पालन करते हो सब, कोई जीव खुद पालन नहीं करता। तो ऐसे भगवान को उन्होंने प्रार्थनाएं की और अहंकार को शुद्ध करने की बात की। अहंकार जब शुद्ध होता है तब पूर्ण ज्ञान हमारे प्राप्त होता है, हमारा ज्ञान और हमारी क्रियाएं सब पूर्ण हो जाती हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद बहुत सुंदर बात तात्पर्य में लिखते हैं कैसे अहंकार को शुद्ध किया जाता है। वो कहते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण ध्वनि से हुआ है। ये सृष्टि कैसे आई? ध्वनि से। वैसे इसको कई वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया। पहले वैज्ञानिकों ने कहा था कि ये सृष्टि आई एक बहुत बड़े धमाके से, बिग बैंग थियरी, बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिर अचानक सारी सृष्टि। कितना अच्छा होता ना कि धमाके से अगर सृष्टि होती, हम लोग कोई परेशानी नहीं लेते, एक बम लाके यहाँ पे लगा देते बहुत बड़ा, बस उतना खर्चा करना पड़ता, फिर बम फूटता और उसके बाद सुंदर मंदिर प्रकट हो जाता उसमें से, है ना। हमारे वैज्ञानिकों की यही थियोरी है, वो यही कहते हैं कि जगत इतना सुंदर, जगत पेड़ पौधे नदियाँ समुद्र ये सारा जो आया है बहुत बड़ा धमाका हुआ था और धमाके से आ गया। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने अब इसको स्वीकारा नहीं है, तो अब वो कहते हैं कि नहीं, शुरुआत में शब्द था और यही वेदों का वाक्य है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो सृष्टि की रचना हुई है ये शब्द ध्वनि से हुई है। कैसी ध्वनि? भगवान के मुख से निकली तपह, और फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या करनी प्रारंभ की, तो ध्वनि से सब कुछ प्रारंभ हुआ। तो प्रभुपाद कहते हैं सृष्टि का जो मूल है वो ध्वनि है, इसीलिए अगर हमारी ध्वनि शुद्ध हो जाए तो फिर बाकी चीजें शुद्ध हो जाती हैं। हमारी जो वाचा है अगर वो शुद्ध हो जाए, हमारा ज्ञान शुद्ध हो जाए, तो अहंकार अपने आप शुद्ध हो जाएगा। और इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वाचा को शुद्ध करने के लिए क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिव जी ऐसा कहने के बाद, ये ज्ञान पूरा देने के बाद, अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपका सुंदर रूप देखना चाहता हूं। और फिर कौन सा रूप, उसका वर्णन प्रारंभ करते हैं। घनश्याम भगवान श्री कृष्ण के रूप का वो वर्णन प्रारंभ करते हैं कि ऐसे रूप को देखना चाहता हूं। फिर उनके मुखारविंद का वर्णन करते हैं, उनके शरीर के अन्य अंगों का वर्णन करते हैं, उनकी नाभि का वर्णन करते हैं, उनकी जंघाओं का वर्णन करते हैं, उनके फिर चरण कमलों का वर्णन करते हैं। ऐसे शिव जी पूरा वर्णन उनके रूप का करते हैं। देखिए शंकराचार्य जी के जो अनुयायी हैं, जो ये कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, उन्हें ये शिव जी की बातें सुनानी चाहिए। आपके ही आचार्य क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य जी शिव जी हैं ये तो वो मानते हैं, तो शिव जी क्या कह रहे हैं इसको सुनिए। इस रुद्र गीत में शिव जी बहुत सुंदर, बड़े काफी श्लोकों में उन्होंने वर्णन किया भगवान का, कैसे भगवान का रूप है। और वो कहते हैं मैं वो रूप देखना चाहता हूँ आपका। तो ऐसे वो प्रार्थना करते हैं भगवान के बहुत सुंदर रूप का वर्णन करते हुए। और फिर वो कहते हैं कि ये रूप कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भक्ति ही एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है आपको प्राप्त करने का। ज्ञान वैराग्य कर्म ये सब नकार देते हैं, केवल भक्ति, भक्ति के द्वारा आपको प्राप्त किया जा सकता है। तो फिर से उन शंकराचार्य जी के अनुयायियों को ये सुनना चाहिए शिव जी क्या कह रहे हैं। वे लोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं अपने ज्ञान के द्वारा, लेकिन शिव जी कहते प्राप्ति नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी भी इसी बात को कहते हैं भागवत में कि जब व्यक्ति ये सब ज्ञान व्यान फेंक देता है तब भगवान को प्राप्त कर सकता है। ज्ञाने प्रयासे उद्पस्य नमन्ति एव। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये ज्ञान प्रयास ये सबको फेंको, तब फिर भगवान को प्राप्त कर सकते। तो यहां शिव जी भी वही बात कह रहे हैं कि कब प्राप्त किया जा सकता है आपको, जब आपके रूप का सुंदर वर्णन हो और उस रूप का ध्यान करते हुए भगवान की भक्ति में लगा जाए तब उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो शिव जी ऐसी बात कहते हैं कि भगवान की भक्ति, कई लोग हैं शिव जी कहते हैं जो ब्रह्म में विश्वास रखते हैं, जो परमात्मा में विश्वास रखते हैं, लेकिन केवल भक्त हैं जो सही रूप से भगवान को जानते हैं और इसीलिए फिर वो भक्तों का गुणगान करते हैं। तो भक्ति भक्तों से प्राप्त होती है और इसीलिए वो प्रार्थना करते हैं भगवान से। कल के श्लोक में हम लोग पढ़ रहे थे, शनार्धे पितुलये न स्वर्गम न पुनर्जन्म न पुनर्भवम, न स्वर्गम न पुनर्भवम। और फिर वो कहते हैं कि किस तरह से भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिषः, कि भक्तों के लिए या लोगों के लिए एक ही आशीर्वाद है, भगवत संगी संगस्य। भगवत यानी भगवान, संगी यानी उनके भक्त, उनका संग। मर्त्यानाम किम उताशिषः। और फिर उसके बाद ये श्लोक, आज का जो हमने श्लोक पढ़ा उसमें शिव जी कहते हैं कि इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आपका सबसे अच्छा आशीर्वाद, बाकी आप बहुत से वरदान दे सकते हैं लेकिन आपका सर्वश्रेष्ठ वरदान है भक्तों का संग। देखिए शिव जी बता रहे हैं इस बात को जो परम वैष्णव हैं कि सर्वश्रेष्ठ वरदान है भक्तों का संग। तो भगवान से अगर कुछ मांगना है तो शिव जी की तरह मांगना चाहिए कि बस भक्तों का संग बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे शिव जी बता रहे हैं कि भक्तों का संग ये सर्वश्रेष्ठ वरदान है और इसको भागवत में कई जगह पर कहा गया कि भक्तों का संग प्राप्त होना यही सर्वश्रेष्ठ वरदान है। यही बात जब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछी थी, रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु ने कई प्रश्न किए और एक प्रश्न पूछा कि जीवन में सबसे बड़ी हानि क्या है, कौन सा नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, धन के चले जाना, प्रतिष्ठा के चले जाना, शरीर का चले जाना, कौन सा सबसे बड़ा नुकसान है। रामानंद राय ने कहा भक्तों का संग चले जाना, ये सबसे बड़ा नुकसान, ये सबसे बड़ी हानि। तो अगर हमारे जीवन में हमें सब कुछ प्राप्त हो और भक्तों का संग चला जाए, बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है वो। ऐसे कई लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत भक्ति प्रारंभ की, अच्छे से रहे, लेकिन किन्हीं कारणों से फिर कहीं दूर हो गए और सोचने लगे कि बड़े आनंद में हैं, कुछ भोग की वस्तुओं को प्राप्त कर लिया, भक्ति के नियमों को त्याग दिया, लेकिन अंत में उनको खुद ही पता चला कि दुर्भाग्यशाली हैं। इसीलिए ये जान लीजिए कि हमारा धन चले जाना कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है, मान सम्मान चले जाना ये भी कोई बड़ी हानि नहीं है। क्या है, शरीर ही जाने वाला है तो उसके मान सम्मान की इतनी चिंता क्यों। शरीर चले जाना ये भी कोई बड़ी हानि नहीं है, सबसे बड़ी हानि है भक्तों का संग चले जाना। अगर हमसे भक्तों का संग छूट गया है किसी भी कारण से, भगवान जब किसी को दंड देते हैं तो उसको भक्तों के संग से दूर कर देते हैं, ये बहुत बड़ा दंड है उस व्यक्ति के लिए भक्तों के संग से दूर चले जाना। कभी कभी भक्त व्यक्ति प्रसन्नता से भक्तों के संग से दूर जाता है, लेकिन वो प्रसन्नता नहीं है, वो भगवान का वरदान नहीं है, वो दंड है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि सबसे बड़ा नुकसान, तो यहाँ शिव जी इसी श्लोक में यही बता रहे कि आपका सबसे बड़ा वरदान यही है कि आप भक्तों के संग प्रदान कीजिए। दूसरे शब्दों में सबसे बड़ा नुकसान मेरा होगा अगर मुझे भक्तों का संग नहीं मिलेगा। तो इसलिए जीवन में हमें ये सोचना चाहिए कि हम ऐसी अवस्था में ना रहें, कभी भी हमारा जीवन ऐसा ना हो, जीवन के अंत तक भक्तों का संग बना रहे ये कामना करनी चाहिए। और मैं सेवा करता रहूं, जैसे प्रभुपाद ने कहा एक स्थान पर, प्रभुपाद कहते मैं अर्जुन की तरह देह त्यागना चाहता हूं युद्ध करते हुए, अर्थात युद्ध करते करते मैं अपना देह त्यागना चाहता हूं। कौन सा युद्ध, प्रचार करते हुए माया से युद्ध, क्योंकि प्रचार ये माया से युद्ध है ना, सीधा युद्ध है, एकदम सामने जाकर उससे युद्ध करना। तो प्रभुपाद कहते मैं ऐसे अर्थात प्रचार करते हुए, और ऐसे ही गए प्रभुपाद। जिस समय गए तो उस समय वो भागवत पर ट्रांसलेशन कर रहे थे, अपने भक्तों को प्रचार कर रहे थे, सबको बता रहे थे कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जाने के पहले सब, जैसे हम लोग व्यवस्था करते हैं ना, 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा व्यवस्था करके जाए, तो प्रभुपाद सारी व्यवस्था कर रहे थे। तो प्रभुपाद प्रचार करते हुए गए। तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा जीवन, ये सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति वो होता है जो भगवान के भक्तों के संग में अपना देह त्यागता, जैसे हरिदास ठाकुर, जैसे भीष्म देव। हरिदास ठाकुर की जब इच्छा हुई, बड़े वृद्ध हुए, तो एक समय चैतन्य महाप्रभु आए, हरिदास ठाकुर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो पूछा कि क्या बात है हरिदास, लगता है तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं। उन्होंने कहा शरीर तो ठीक है, मेरा मन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ठीक से जप नहीं कर पा रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अब तो बहुत हो गया, जीवन भर तुमने इतना जप कर लिया, 3 करोड़ ना, इतना नाम आप लेते हो, तो कितने माला करते थे वो, 192 माला। हम लोग तो 64 कभी नाम सुन ले तो हमें लगता है कि नहीं हो, तो 3 बार 64 कर लेते थे। तो इतना नाम आपने ले लिया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा बस कोई चिंता नहीं, अभी मत लो, हो गया तुम्हारा, आपको तो जाना ही है भगवान के धाम, आप क्यों चिंता कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरा नियम है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता, लेकिन बस अब यही है कि शरीर। तो उन्होंने कहा कोई इच्छा, तो उन्होंने इच्छा बताई कि बस मेरी इतनी इच्छा है कि जब मैं अपना देह छोड़ूं तो उस समय आप सामने हो, तो मैं आपको देखकर देह छोड़ूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। अब फिर चले गए और अगले दिन अपने सारे भक्तों को लेकर आए। वैसे तो कभी अकेले आया करते थे, जगन्नाथपुरी में मंदिर में जाते थे, फिर मंदिर दर्शन करके फिर दर्शन देने के लिए आते थे हरिदास ठाकुर, क्योंकि हरिदास ठाकुर मंदिर नहीं जा सकते थे, नियम था, उनको अनुमति नहीं थी अंदर जाने की, तो हरिदास ठाकुर नहीं जाया करते थे। वैसे अनुमति नहीं थी, उन्होंने ही स्वयं कहा था कि मैं बहुत नीच हूँ, यवन कुल में मेरा जन्म हुआ है, मुझे अंदर जाने का अधिकार नहीं, इसलिए जाया नहीं करते थे। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते थे। देखिए भक्त के लक्षण, भक्त का गुण, अगर भक्त नहीं जाता तो भगवान स्वयं आते दर्शन देने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु रोज आया करते थे। तो अगले दिन सभी भक्तों को लेकर आए और हरिदास ठाकुर से कहा कि भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, कृष्ण पूरी करेंगे। हरिदास ठाकुर समझ गए कि आज का दिन है, मुझे अपना देह त्यागना। और फिर बड़ी जोरदार कीर्तन हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने, सभी भक्तों ने कीर्तन प्रारंभ किया। और फिर हरिदास ठाकुर का जब समय आया, सोचिए कितना वो उस दृश्य को केवल याद करने का प्रयास कीजिए कि चारों तरफ कीर्तन हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कीर्तन कर रहे हैं, सारे भक्त कीर्तन कर रहे हैं, बड़े उल्लास में, बड़े जोर शोर से कीर्तन हो रहा है। और उस समय हरिदास ठाकुर बैठ गए और उन्होंने अपनी अपने जो नेत्र हैं चैतन्य महाप्रभु पर टिका दिए। अब समय आया था उनके देह त्यागने, तो उन्होंने खुद बैठकर बस केवल भगवान को देखने लगे। और चैतन्य महाप्रभु ने उस समय बड़ा जोर से कीर्तन प्रारंभ किया, और उससे पहले हरिदास ठाकुर ने सभी भक्तों के चरणों की धूली अपने सर पर लगाई। देखिए किसको ऐसा भाग्य प्राप्त होगा मृत्यु के समय, पता नहीं। तो उन्होंने सब भक्त कीर्तन कर रहे थे और हरिदास ठाकुर ने सबके चरणों की धूली अपने सर पर लगाई, फिर बैठ गए भगवान पर, उन्होंने ध्यान किया उनके मुख पर चैतन्य महाप्रभु के। और ऐसी अवस्था में जब स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सारे भक्त कीर्तन कर रहे हैं, महामंत्र बोला जा रहा है, हरि हरि के गुणगान हो रहा है, और ऐसे समय में उन्होंने अपने देह को त्याग दिया हरिदास ठाकुर ने। तो ये कामना एक भक्त को करनी चाहिए। और फिर स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनके शरीर को उठाकर नृत्य किया और फिर लेकर गए समुद्र में, स्नान करवाया स्वयं, और वहां उन्होंने घोषणा की कि आज से ये महातीर्थ है, जो भी इसमें स्नान करेगा उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ये भक्त हैं। तो हरिदास ठाकुर ने दिखलाया कि कैसे देह, भीष्म देव ने दिखलाया कि कैसे देह त्यागना चाहिए हमें इस जगत में। तो शिव जी वही प्रार्थना कर रहे हैं कि बस मुझे भक्तों का संग मिले। तो हम सबको भी ये प्रार्थना एक कर लेनी चाहिए। वैसे भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए अपने लिए, लेकिन ये मांग लेना चाहिए कि बस भक्तों की सेवा करते हुए जाएं, सेवा लेते हुए नहीं जाएं। ये कामना तो होनी चाहिए। तो ऐसे शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे भक्तों का संग मिले ताकि मैं शुद्ध हो सकूं। और फिर आगे वो इस भौतिक जगत का वर्णन करते हैं कि कैसे ये जगत बनता है, कैसे इसकी रचना होती है। भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में फिर आगे उसमें हरेक के हृदय में प्रवेश करते हैं, फिर इन जीवों को यहाँ पर प्रवेश कराते हैं। चार तरह से जीव शरीर ग्रहण करते हैं, चार तरह से जीव अलग अलग शरीर ग्रहण करते हैं। जैसे एक होते हैं जो गर्भ से शरीर ग्रहण करते, जैसे हम सब माँ के गर्भ में आते हैं और फिर हम लोग शरीर ग्रहण करते हैं। दूसरे होते हैं अंडजा, जो अंडे से आते हैं। तीसरे होते हैं स्वेदजा, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। और चौथे होते हैं बीज के द्वारा जो आते हैं, उद्बीजा मतलब जो बीज से प्रकट होते हैं। तो ऐसे चार प्रकार के शरीर हम सब इस भौतिक जगत में ग्रहण करते हैं। तो शिव जी कहते हैं वो सब आप प्रदान करते हैं। और फिर शिव जी कहते हैं कि ये जीव इस जगत में बंध जाता है अपने अपने कर्मों से, लेकिन इस जगत में आने का मूल उद्देश्य है कि वो भगवान की भक्ति करे। और फिर साधारण जीव ही क्यों, शिव जी कहते हैं ब्रह्मा जी भी आपके चरण कमलों की भक्ति करते हैं, सारे जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं आपके चरणों की भक्ति करते हैं, तो फिर जीव को तो करना ही चाहिए। तो फिर वो बताते हैं कि इस जगत में रहना ये जीव का लाभ नहीं है, इस जगत के परे भगवान के धाम को प्राप्त करना ये जीवन का उद्देश्य है। तो ऐसे वो इस रुद्र गीत को पूरा करते हैं और उसके बाद वो प्रचेताओं को कहते हैं कि इसको तुम्हें इसका गान करना चाहिए जो मैंने ये अभी कहा है। और अंत में फलश्रुति देते हैं कि इसको गाने का क्या लाभ है। तो हम इसको थोड़ा पढ़ना चाहेंगे प्रभुपाद के जो अनुवाद हैं कुछ श्लोकों को, जिसमें इसकी फलश्रुति दी गई है। तो ये कहते हैं हे राजपुत्रों, मैंने स्तुति के रूप में तुम्हें पवित्र नाम जप की योग पद्धति बतला दी है। तुम सब इस स्तोत्र को अपने मनों में धारण करते हुए इस पर दृढ़ रहने का व्रत लो, जिससे तुम महान मुनि बन सको। तुम्हें चाहिए कि मुनि की भांति मौन धारण करके तथा ध्यान पूर्वक आदर सहित इसका पालन करो। सबसे पहले समस्त प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने हमें यह स्तुति सुनाई थी। भृगु आदि प्रजापतियों ने भी इसी स्तोत्र की शिक्षा दी है, क्योंकि वे संतान उत्पत्ति करना चाह रहे थे। जब ब्रह्मा द्वारा हम प्रजापतियों को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश हुआ, तो हमने भगवान की प्रशंसा में इस स्तोत्र का जप किया, जिससे हम समस्त अविद्या से पूरी तरह से मुक्त हो गए। फिर वो आगे कहते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त जिनका मन सदैव उन्हीं में लीन रहता है और जो अत्यंत ध्यान तथा आदर पूर्वक इस स्तोत्र का जप करता है, शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करता है। फिर वो आगे कहते हैं, इस संसार में उपलब्धि के अनेक प्रकार हैं, किंतु इन सबों में ज्ञान ही उपलब्धि सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि ज्ञान की नौका में आरूढ़ होकर अज्ञान के सागर को पार किया जाता है। यद्यपि भगवान की भक्ति करना एवं उनकी पूजा करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई मेरे द्वारा रचित एवं गाए गए इस स्तोत्र का केवल पाठ करता है, तो वह सरलता पूर्वक भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। समस्त शुभ आशीर्वादों में से सर्वप्रिय वस्तु भगवान है। जो मनुष्य मेरे द्वारा गाए गए इस गीत को गाता है, वह भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ऐसा भक्त भगवान की भक्ति में स्थिर होकर परमेश्वर से मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है। जो भक्त प्रातःकाल उठकर हाथ जोड़कर मेरे द्वारा गाई गई स्तुति का जप करता है और अन्यों को सुनाता है, वह निश्चय ही समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। और अंतिम श्लोक में वो कहते हैं, हे राजकुमारों, मैंने जो तुम्हें स्तुति गाकर सुनाई है वह परमात्मा स्वरूप भगवान को प्रसन्न करने के लिए थी। मैं तुम्हें इस स्तुति को गाने की सलाह देता हूँ, क्योंकि यह बड़ी से बड़ी तपस्या के समान प्रभावशाली है। इस प्रकार जब तुम सब परिपक्व हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हें सारे अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे।